रास्ता है कोई पत्थर है सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर धरती पर स्वर्ग बसा लेना ओ मानव तुझ पर निर्भर है।
नमस्कार दर्शकों, नैतिक मूल्यों की यात्रा में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस संसार में रह रहे हैं वह कंपटीशन से भरपूर है। चारों तरफ कुछ न कुछ पाने की दौड़ सी दिखाई देती है, परंतु विवेक ये कहता है कि ये प्राप्तियां अल्पकालिक है। इन प्राप्तियों का आधार मानव मन है, हमारी मानसिक शक्तियां हैं, जिसे हम आत्मबल भी कहते हैं। तो आज हम जिस शक्ति के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो है परख शक्ति, और इसके लिए हमारे स्टूडियो आज पधारी है बीके सुषमा बहन। नमस्कार बहन जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
नमस्कार, धन्यवाद।
दर्शकों, बीके सुषमा बहन जी जयपुर से पधारी है। आप पिछले 44 सालों से आध्यात्मिक ब्रह्मा कुमारी संस्था में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने सेवाओं के लिए पूरे भारत वर्ष में भ्रमण भी किया है। आपकी विशेष रुचि मेडिटेशन में है, जिस पर आपने बहुत से प्रयोग किए हैं और दूसरों को भी कराए हैं। एक बार दर्शकों की तरफ से एक बार फिर से आपका स्वागत है।
धन्यवाद। ओम शांति।
बहन जी, जैसे कि आज का हमारा विषय है परख शक्ति, तो पहले आप इसे कैसे परिभाषित करेंगी? परख शक्ति क्या है?
परख शक्ति मनुष्य के जीवन में एक बहुत बड़ी शक्ति है। इस आधार से ही मनुष्य का जीवन आगे बढ़ता है।
जी,
हम अपने घर में एक कप चाय भी बनाते हैं, उसमें भी परख शक्ति चाहिए, कितना दूध, कितना पानी, कितनी चीनी। तो आप इसको कह सकते हैं पावर टू जज। पहले हम जज करते हैं और फिर उसको हम डिसाइड टू पुट इन एक्शन।
जी,
अगर हमारी जजमेंट ठीक नहीं होगी तो हमारा एक्शन भी ठीक नहीं हो सकता है। तो हर क्षेत्र में, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र है, कार्य का क्षेत्र है, व्यवहार क्षेत्र है, व्यापार क्षेत्र है, हर एक में हमें परख शक्ति की परम आवश्यकता है।
जी,
व्यापारी अपने ग्राहक को परखता है, स्टूडेंट ये परखता है मुझे क्या पढ़ना है, मेरा आगे भविष्य क्या है, कैरियर क्या है। और आप सामाजिक क्षेत्र में हैं तो आप कौन सी सेवा करना चाहते हैं, कैसे आप अपने भविष्य को उज्ज्वल कर सकते हैं। कोई नेता है, उसकी भी परख शक्ति, उसके कार्यकर्ता ठीक काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर वाले उससे क्या चाहते हैं। तो ये सब बातों का समय प्रति समय निर्णय लेना, उसके लिए अपनी परख शक्ति महत्व रखती है। एक ज्वेलर, वो भी पहले हीरे को परखता है, ये पत्थर कौन सा है, कितने कैरेट का है, फिर उसको तराशता है, फिर उसकी वैल्यू रखता है। तो परख शक्ति बहुत महीन शक्ति है, जिसकी जीवन में हमें अति आवश्यकता है।
जी, जैसा कि आपने इसका अर्थ बताया, तो अगर ये जीवन में है तो इसके क्या फायदे हैं, और नहीं है तो क्या नुकसान हो सकते हैं?
परख शक्ति है तो मनुष्य का जो रास्ता है वो बहुत क्लियर और साफ होता है।
जी,
अन्यथा मनुष्य मन हमेशा ही कंफ्यूज्ड रहता है, मूंझा हुआ रहता है, घबराहट सी रहती है। बहुत से लोगों को आप देखेंगे, जिसको आप कई बार कहते हैं, कई लोगों में, बच्चों में स्टेज फियर, एग्जामिनेशन फियर, क्योंकि वो अपने आप को तैयार नहीं कर पाए हैं। अगर पहले से ही परख लिया जाए, समझ लिया जाए मुझे ये कार्य करना है, तो वो उसके लिए पहले से ही तैयार हो जाता है। तो अगर परख शक्ति नहीं है तो पूर्व तैयारी नहीं होती, और पूर्व तैयारी नहीं है तो उसके अंदर हमेशा ही कंफ्यूजन रहेगा। और यहाँ तक ये कंफ्यूजन मनुष्य को ले जाता है कि वो डिप्रेशन तक भी जा सकता है। इसलिए परख शक्ति हमारी तब होगी जब हमारा मन और बुद्धि एकदम क्लियर हो, क्लीन हो, तब हम अपने अंदर इस शक्ति को धारण कर सकते।
मैं जानना चाहूंगी कि परख शक्ति जीवन में कब कब काम आती है?
मनुष्य को हर समय ये शक्ति चाहिए। बच्चे के साथ कैसे व्यवहार करना है, बड़ों के साथ कैसे करना है, ससुराल में है तो परिवार के साथ कैसे पेश आना है, पीयर में है तो कैसे आना है, ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेटर है तो उसको कैसे करना है, अगर मैं नीचे हूँ, मेरा बॉस है, तो मुझे कैसे व्यवहार करना है।
जी, जी।
तो इसमें मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि इसके लिए दो बातें चाहिए। एक तो निष्पक्ष भाव, इम्पार्शियलिटी। पार्शियल होंगे तो हमारी परक शक्ति काम नहीं करेगी।
बिल्कुल।
और दूसरा, हम पहले से ही कई बार कई बातों में अपने मन के भाव बना के रखते हैं, फलाना ऐसा ही है, ये ऐसा ही बोलेगा, तो वो जो हम बायस करके अपने मन को रखते हैं तो भी हमारी परक शक्ति काम नहीं करती है। इसलिए अपना माइंड, इंटेलेक्ट एकदम क्लीन और क्लियर हो, हम किसी की बात को सुनते हैं, निष्पक्ष भाव से सुने।
तो हमारा जजमेंटल होना क्या उचित है? क्योंकि कभी कभी हम पहले से पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि ऐसा ही होगा या ऐसा नहीं होगा, हम अपने हिसाब से सोचते हैं, तो वो कहाँ तक सही है?
पूर्व अनुमान में तो फिर बहुत सी बातें, बहुत गलतियां हो सकती हैं, बाद में हमारे मन में पश्चाताप भी हो सकता है।
जी।
क्योंकि जब मुझे बाद में रियलिटी मालूम होगी तो लगेगा अरे मुझे इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन कर चुकी हूँ तो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए उसमें फिर ईगो प्रॉब्लम डेवलप हो जाए। इसलिए मनुष्य अगर जीवन में सफलता चाहता है तो हमेशा निष्पक्ष भाव से होकर कार्य करे, और किसी भी चीज के लिए पूर्व अनुमान नहीं। आप पाएंगे कि यहाँ तक वेदर के लिए भी कहते हैं पूर्व अनुमान, सोचा जाता है कल बारिश बहुत होगी, कई बार बिल्कुल नहीं होती है बारिश, इस बार सर्दी लंबे समय तक रहेगी, कई बार बिल्कुल नहीं रहती है। अनुमान तो अनुमान ही है, अनुमान से मनुष्य कभी भी ऊपर नहीं जाता है। लेकिन हाँ, संसारिक जीवन में है तो हम कुछ अनुमान लगाते हैं, लेकिन अनुमान न लगा के हम वास्तविकता के धरातल पर आए कि अगर मेरे साथ ऐसा हो तो फिर क्या होगा। हम किसी के साथ भी व्यवहार में आते हैं, कई बार हमें क्या लगता है, पिछले दिनों एक बहन मेरे पास आई और बोली मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ जो है वो गलत हो रहा है, मुझे लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो मैंने जैसे ही उसको कहा कि कोई किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करता है, कोई किसी का शोषण नहीं करता है, मनुष्य सबसे अधिक अपना शोषण खुद ही खुद का शोषण करता है, उसको ये बात बहुत अच्छी लगी। तो अब ये क्या है, ये भी एक मनुष्य की कल्पना है, मेरा शोषण हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। अपन अगर इस समय में अपने आप को थोड़ा शांति और धैर्यता से चलते हैं तो हमारा कोई भी एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकता है,
हम समझ पाएंगे परिस्थिति को,
परिस्थिति
पर्सन को, हर चीज को समझ पाएंगे क्लियरली।
तो निष्पक्ष भाव चाहिए, हमारा मन बायस ना हो, और थर्ड हमारे अंदर इसके लिए बहुत शांति और धैर्यता, पेशेंस।
जी,
पेशेंस भी हो, कोई कुछ कह रहा है अच्छा पीसफुली हम उसको सुने तो सही, पहले क्या कह रहा है।
जी, जी।
जब पीसफुली सुनते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि हाँ ये बात ऐसे नहीं, ये ऐसे है, और इससे अपने व्यक्तित्व में बहुत निखार आता है।
जी,
हमने ये पाया है कि जिनमें परख शक्ति होती है वो अपने आप ही एक लीडर की तरह डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि लीडर को तो यही करना है, 10 कार्य करता है तो भाई 10 में से किसी एक को ही चुनेगा, अगर उसको 2 चुनने हैं तो इसका मतलब है 8 तो उसको रिजेक्ट करने ही पड़ेंगे, तो उन 8 को, किन 8 को छोड़े और किस 2 को सिलेक्ट करे।
जी,
तो उसके अंदर जब ये अंदर में पेशेंस है, पीसफुल है, तो अपने आप उसकी परख शक्ति काम करती है ऑटोमेटिक। ये हमारे अंदर है, सबके अंदर है, लेकिन हम अपनी पीस खो देते हैं, अपनी पेशेंस खो देते हैं, इसलिए हम परख नहीं पाते और फिर हम कहते हैं मेरे साथ तो धोखा बहुत होता है।
जैसे आपने ये बहुत अच्छी बात कही, पीसफुल होना जरूरी है, धैर्य होना जरूरी है। मैं जानना चाहूंगी इसको आप और क्लियर करें कि परख शक्ति अपने अंदर बढ़ाने के लिए हमें और किन किन क्वालिटीज की जरूरत है।
पहली बात तो यही है कि हम अपने मन और बुद्धि को बहुत नीट एंड क्लीन रखें। अगर हमारे मन में ईर्ष्या द्वेष का भाव है, नीट एंड क्लीन से मतलब क्या है, ईर्ष्या द्वेष का भाव है, तब भी हम परख नहीं सकते।
जी।
क्योंकि जब ईर्ष्या द्वेष है तो वहां पर क्या होगा, वहां पर कॉम्पिटिशन हो जाता है, मेरा आपसे कॉम्पिटिशन है, दूसरे से कॉम्पिटिशन है। और अगर हम शांत है, अब यहाँ पीसफुल, मुझे क्या करना है, मैं और अच्छा क्या कर सकती हूँ, अपनी एबिलिटी को बढ़ाएं, अपने को योग्य बनाएं। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, दूसरे को गिराते हैं, दूसरे की टांग खींचते हैं। लेकिन आगे जाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे खुद को खुद पुश करना होगा।
हम खुद ऊपर उठेंगे तो अपने आप सबको दिखाई देंगे, किसी को नीचे बिठाने की
जरूरत ही नहीं।
जी बिल्कुल सही। जैसे कि दीदी आपने अभी इसका इम्पोर्टेंस बताया कि ये परख शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है, अगर ये ना हो तो इंसान गलत मार्ग पर भटक सकता है, सही मार्ग से भटक सकता है। लेकिन सबसे पहले तो हम ये अपनी परख शक्ति को निर्धारित कैसे करें, इसका मापदंड क्या होगा, फिर हम उसको यूज कैसे करें, वो बाद की बात।
परख शक्ति में निर्धारण की कोई बात नहीं है, परख शक्ति तो एक कॉमन चीज है। जैसे हम कोई मकान बनाते हैं तो मकान बनाने के लिए प्लॉट चाहिए, ये तो फिर बाद में देखेंगे कि हम वो प्लॉट किस लोकेलिटी में लेना चाहते हैं,
मतलब
कितना बड़ा लेना चाहते हैं। पहली बात है परख शक्ति चाहिए, ये हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। मुझे शरीर ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, साड़ी पहनू या शर्ट पहनू, लेकिन कपड़ा चाहिए, कपड़ा क्लोथ जो है वो मेरी रिक्वायरमेंट।
तो पहले हम जरूरत देखें अपनी, वो पहचाने कि वो सही है या गलत है, उसके बाद हम फिर अपनी परख शक्ति को यूज करें।
नहीं 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 नहीं, फर्स्ट परख शक्ति कपड़ा
जी,
चाहिए
जी,
अब वो व्हाइट चाहिए कलरफुल चाहिए वो सेकेंडरी है, फर्स्ट इज कपड़ा क्लोथ। ऐसे ही परख शक्ति तो चाहिए ही चाहिए। कई लोगों के पास इतनी परख शक्ति नहीं होती, जिनको हम कहते हैं ये बेचारा थोड़ा भोला है, ये इतना डेवलप नहीं है या ये थोड़ा बुद्धू नुमा है। तो अगर ऐसा होगा तो फिर हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। तो परख शक्ति तो मनुष्य के अंदर है भी, चाहिए भी, और इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, तीनों ही बातें हैं। तो परख शक्ति, जैसे आंख जरूरी है नहीं तो हमें दिखाई नहीं देगा
जी,
ऐसे ही परख शक्ति माना मेरी बुद्धि, मन और बुद्धि दोनों एकदम खुले हुए हैं
जी।
अगर खुले हुए नहीं है तो फिर परख शक्ति नहीं है। मन और बुद्धि दो आंखें हैं आत्मा की
जी,
और उनमें ये परख शक्ति है। तो ये तो आंख में जैसे रोशनी, ऐसे ही मन बुद्धि में
परख शक्ति जी जी। लेकिन बहन जी, कभी कभी ऐसा होता है विपरीत परिस्थिति आने पर हमें समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ऐसे विपरीत परिस्थितियों में हम परख शक्ति को कैसे यूज करेंगे?
विपरीत परिस्थितियों में दो बातें हमें मदद कर सकती हैं। जैसे पहले कहा, एक तो हमारी नेचुरल नेचर हो पीसफुल रहने की
जी।
दूसरा, अगर हम चाहते हैं कि अपनी परख शक्ति को बढ़ाएं तो हमें अपनी आत्मा का संबंध कहें, मन या बुद्धि को कहें, उस सर्वशक्तिवान परमात्मा के साथ लगाना होगा
जी।
तो क्योंकि परमात्मा को कहा जाता है बुद्धिवानों का बुद्धिवान
जी,
तो जब हमारा मन और बुद्धि परमात्मा के साथ लग जाता है तो ये दिव्य बुद्धि की शक्ति हमारे अंदर आती चली जाती है। फिर कैसी परिस्थिति है उस समय हम थोड़ा सा भी पीसफुल रहते हैं तो अपने आप हमारी इंटेलेक्ट काम करती है, जिसको आप लोग कई बार कहते हैं कि मेरे मन ने ऐसा कहा था, मैंने मन की आवाज को नहीं सुना
जी, जी।
ये मन की आवाज मेरी परख शक्ति कह रही थी ये मत करो। कोई सिगरेट पीता है, उसको मन एक बार कहता है नहीं पीना, खराब है, डेंजरस, लेकिन फिर भी वो बाहरी वातावरण में आके उसको अप्लाई नहीं करता है। तो दो बातें हैं, एक है अपने मन की आवाज सुने, उसको अप्लाई करें, दूसरा है परमात्मा से संबंध जोड़कर अपनी बुद्धि को डेवलप भी कर सकते हैं।
बहुत सरल तरीका बताया, पहले अपने आप को हम पेशेंस में लाके खुद से पहले अपने आप से पूछे, अपने बुद्धि से निर्णय करे, फिर परमात्मा से संबंध जोड़े, उसके बाद कोई डिसीजन ले। कोई भी विपरीत परिस्थिति आने पर हम ऐसा कर सकते हैं तो हो सकता है हम सही चीज निर्णय ले सके, सही परख कर सके। दीदी जी, आपने आध्यात्मिकता के द्वारा इस परख शक्ति को हम और कैसे बढ़ा सकते हैं, इसका कोई सरल मार्ग बताएं।
भगवद गीता में भी भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, जो मनुष्य मेरा ध्यान लगाता है उसको मैं दिव्य बुद्धि दिव्य चक्षु का वरदान देता
जी।
तो परमात्मा दिव्य बुद्धि दाता दिव्य चक्षु विधाता है। बहुत से देवी देवताओं के मस्तक पर तीसरा नेत्र यहाँ दिखाते हैं
जी, जी।
तो तीसरा नेत्र को यहाँ तीसरी आंख नहीं निकल आती है, लेकिन अपने अंदर विवेक का जागरण होना ये उसका प्रतीक है। दो चीजें हैं, एक है बुद्धि दिमाग जो हर मनुष्य के पास अपने अपने अनुसार है, और एक है विवेक। इंटेलिजेंसिया आज की दुनिया में बढ़ रहा है, लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं।
जी,
इंटेलिजेंट होना अलग बात है, लेकिन वाइज होना अलग बात है।
जी बिल्कुल सही।
परख शक्ति उनमें है जो वाइज है। आप इंटेलेक्चुअल बनना चाहते हैं, आपके पास बहुत सी जीके है, जनरल नॉलेज है, बहुत आप पढ़ लिख लेते हैं, बहुत सी ट्रेनिंग्स ले लेते हैं, ये आप इंटेलिजेंट हैं। लेकिन बहुत बार देखा जाता है जो अपने कार्य क्षेत्र में इंटेलिजेंट हैं, वो जब अपनी फैमिलीज में जाते हैं, परिवार में जाते हैं, वहां बिल्कुल फेल होते हैं, क्योंकि इंटेलेक्ट जो है वो उस समय काम नहीं करती है।
जी,
इंटेलेक्ट जो विजडम है, विजडम का मतलब है अंडरस्टैंडिंग, समझ।
जी,
तो मेरे अंदर ये समझ होनी चाहिए मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ। उसके लिए आध्यात्मिकता कहती है पहले अपने को इतना सा ही जान ले, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ।
जी,
और ये शुद्ध आत्मा हमें दिव्य बुद्धि का काम भी करती है और बुद्धि का काम भी करती है। कार्य क्षेत्र में भी बुद्धि चाहिए, तो इंटेलिजेंसी जो चाहिए उसके लिए भी आपको क्या करना होगा, दिल दिमाग तो क्लियर रखना होगा ना, तब तो आपकी एबिलिटी बढ़ेगी।
बिल्कुल।
अगर हमारे अंदर केवल स्वार्थ है, केवल ईर्ष्या द्वेष है, तो भी हम अपने क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसलिए पहले हम अपनी सोच को अच्छा करें और फिर अपने विवेक से काम ले। विवेक जिसको मैंने कहा विजडम, और प्लस दूसरी चीज है हमारे अंदर भावनाएं, इमोशंस। तो अगर हमारे विवेक और भावना का बैलेंस ठीक हो जाता है तो हमारी शक्ति बढ़ जाती है।
जी,
तो विवेक और भावना हर मनुष्य में है।
बिल्कुल।
लेकिन आजकल दुनिया में विवेक और भावना को दबा देते हैं, केवल अपनी इंटेलेक्ट, इंटेलेक्चुअल हम बनते जाते हैं, जहां से हमारी ईगो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है।
जी।
और जैसे ही विवेक डेवलप होता है, ईगो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो हमें ऐसा लगता है हम इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर केवल खेल खेलने आए हैं।
जी।
क्योंकि एक व्यक्ति सब कुछ नहीं बन सकता।
बिल्कुल।
मान लो मैंने आज पढ़ा कि प्राइम मिनिस्टर सबसे हाईएस्ट पोस्ट है, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। कल को मैं देखती हूँ नहीं नहीं, इसके पास ये पावर्स नहीं है, मैं तो क्या बनूं, मैं एक गवर्नर बन जाऊं। फिर नहीं नहीं, ये भी ठीक नहीं है, मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाऊं। तो हम क्या क्या बन सकते हैं? एक मनुष्य एक ही रोल प्ले कर सकता है अगर वो उसको बाखूबी निभाए। यहाँ ये चाहिए परीक्षा। परख शक्ति होगी तो वो बाहरी वातावरण, बाहरी परिस्थितियां, बाहरी व्यक्तियों से प्रभावित नहीं होगा।
बहुत सुंदर।
लेकिन परख शक्ति होगी तो वो सोचेगा मुझ में जो योग्यता है, मैं इस योग्यता को बढ़ाऊं और इसको अपने लिए भी और परिवार, समाज, देश की सेवा के लिए भी लगाऊं।
बहुत अच्छे उदाहरणों से इतना अच्छी तरह समझाया, और जो इंटेलेक्चुअल और विजडम का डिफरेंस आपने समझाया, अब हमें ये क्लियर हुआ कि हमें परख शक्ति को कैसे यूज करना है। मैं चाहूंगी कि जो पर्सन जिसकी परख शक्ति बहुत सक्षम है, अच्छी है, उसकी क्या क्या निशानियां होंगी?
परख शक्ति जिनमें है उनका मन बहुत एकाग्र होता है।
जी।
और परख शक्ति वाले जो लोग हैं, जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, जिनको देखा है, वो लोग बहुत कम बोलते हैं। वैसे भी आप देखो, जैसे छोटा बच्चा हो, अगर एक कप नीचे गिर जाएगा वो उसमें हंसने लग जाता है।
जी।
कोई गिर जाए तो उसमें भी हंसने लग जाता है। लेकिन वहीं अगर कोई बड़ा व्यक्ति है, कप टूट जाए, वो कहता अरे टूट गया ये तो कोई बात नहीं, पर उठाओ किसी के हाथ पांव में चुभ ना जाए।
जी।
ये मैच्योरिटी है, ये उसका विवेक। बच्चा विवेक से नहीं, उसके लिए तो फन है।
जी, जी।
लेकिन बड़ा ये सोच रहा है कहीं यही इस बच्चे के पांव में ना लग जाए। कोई बेचारा गिर जाए तो बच्चा हंसने लग जाता है कि अरे अरे फलाना गिर गया, अंकल गिर गया। लेकिन बड़ा व्यक्ति क्या करता है, भाग के उसको उठाता है।
जी।
कहता है कहीं हड्डी तो नहीं टूट गई, फ्रैक्चर तो नहीं हो गया।
जी।
जिनके पास परख शक्ति है बहुत कम बोलते हैं, बहुत धैर्यवत होते हैं।
जी।
उनका मन बुद्धि बहुत एकाग्र होता है, स्थित। प्रज्ञा एक शब्द है आध्यात्मिक, बहुत स्थिर चित्त वृत्ति वाले लोग वो होते हैं, पर ऐसे लोग बहुत कम होते हैं।
हाँ वो तो है। इसका मतलब हम जितना कम बोलेंगे उतना हमारी परख शक्ति और बढ़ती जाएगी। जितना हम बाह्य मुक्ता में आते जाएंगे हम समझ नहीं पाएंगे, निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो इस शक्ति से हम क्या क्या अचीवमेंट्स जीवन में कर सकते हैं अगर इसका सदुपयोग करें तो?
इससे आप जो चाहे वो पा सकते हैं। परख शक्ति तो मनुष्य को आगे ही आगे बढ़ाएगी। अपन जो प्रयोग करना चाहे वो कर सकते हैं। अपने आप को हमेशा ही बुराइयों से, विकारों से, व्यसनों से दूर रखेंगे
जी।
कभी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जो मैं आपको परख शक्ति वालों की बताऊं
जी जरूर,
उसको कभी कुछ डिफिकल्टी नहीं लगता है, वो परख लेता है ये करना है। अधिकतर लोग क्या देखते हैं, ये करना है, इसमें तो मेरा कोई च्वाइस नहीं है, या ये बहुत टफ है, इसकी जगह कुछ और नहीं हो सकता, या इसका कोई शॉर्टकट नहीं है,
इजी वे ढूंढते हैं,
ऐसा ढूंढते हैं। परख शक्ति वाला समझ जाता है ये काम है, ये इसी तरीके से होगा और ये हो जाएगा। तो उसको अपने अंदर एक निश्चिंतता रहती है, सर्टन है हो ही जाएगा, थोड़ी मेहनत लगेगी। अनसर्टनिटी और लोगों के अंदर जो इनसिक्योरिटी की फीलिंग रहती है वो नहीं है। परख शक्ति वाले का कनेक्शन सुप्रीम से जरूर जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको लगता है सब हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा और हमेशा खुद भी प्रसन्न रहेगा और दूसरों को भी प्रसन्न रखेगा
जी। बहुत सुंदर दीदी जी, मैं चाहूंगी कि कोई एक अच्छा प्रेरक प्रसंग या फिर अपने निजी अनुभव से हम सबको लाभान्वित करे इसी नैतिक मूल्य के ऊपर, ताकि हमारे दर्शक और अच्छी तरह समझ सके, कुछ प्रेरणा ले सके। कोई ऐसा जीवन प्रेरक प्रसंग या फिर आपका निजी अनुभव हमारे साथ शेयर करें।
जैसा कि हम लोगों ने पहले ही आपने पूछा ही, परख शक्ति, परख शक्ति तो एक शक्ति है
जी।
किसी भी शक्ति को अपने जीवन में धारण करने के लिए, अपने चरित्र को ऊंचा बनाने के लिए, नैतिकता स्वयं में धारण करने के लिए, सबसे पहली बात है अपने आप में गुणों की धारणा
जी।
बिना गुणों के कोई शक्ति हमारे अंदर नहीं आ सकती
जी।
तो ये गुण है कम बोलना, ये गुण है स्वयं को शांत रखना, ये गुण है धैर्यवत होकर रहना
जी।
तो अपने अंदर हम गुणों को बढ़ाएं। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आज के विश्व में एक बहुत बड़ा चमत्कार है
जी।
हालांकि यहाँ चमत्कार को स्वीकारा नहीं जाता है, इसको प्रमोट नहीं किया जाता, लेकिन ये चमत्कार है जहाँ लोग सब शांति की शक्ति से अपना अपना कार्य कर रहे हैं
जी।
लोग तरह तरह के आते हैं, डिमांड अलग अलग प्रकार की है, क्षेत्र अलग अलग हैं, लेकिन अपनी धैर्यता और अपनी परख शक्ति से हर समर्पित सेवाधारी आए हुए व्यक्तियों को सेटिस्फाई करते हैं, खुश करके भेजते हैं
जी।
ये परख शक्ति की ही कमाल है
जी। बहुत अच्छा दीदी जी, आपने बहुत ही सुंदर और सरल शब्दों में हमारा मार्गदर्शन किया कि कैसे हम इस परख शक्ति को अपने अंदर और बढ़ाएं। आपने आध्यात्मिकता से भी कैसे इस परख शक्ति को अपने अंदर ला सकते हैं इसका भी बहुत ही सरलता से अपने विचार प्रकट किए, यहाँ पर अपना अमूल्य समय दिया आकर के। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया।
थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आप सबने इतना अच्छा पूछा और सुना। आप बारम्बार स्वयं भी अभ्यास कीजिए
जी,
और फिर कोई बात हो तो पूछ सकते हैं
जी। जी जरूर, धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसा कि अभी आपने सुना, मैं आशा करती हूँ कि आज की चर्चा से आप भी लाभान्वित हुए होंगे। आज जिस परख शक्ति की हमने चर्चा की है वो सभी हर एक मानव में निजी शक्ति होती है, और जो इसको अनुभव कर लेता है और इसका सदुपयोग करता है वो जीवन में महान उपलब्धियां पा सकता है। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, और अगले अंक में हम फिर से एक नए नैतिक मूल्य के साथ इस यात्रा को जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
तू दीप से दीप जलाता चल, तू सबको गले लगाता चल। तू प्रेम एकता शांति सत्य गाता चल, गुन ही गुन भरे पड़े तुझ में अंतर तेरे।